देवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। महाराज युधिष्ठिर बड़ी विचित्र विचित्र बातें पूछते हैं, पर राज संबंधी बातें हैं। अब राजाओं की बातें हैं, अपने सब बात क्या करें। मुख्य मुख्य बातों पर विचार करते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि महाराज, राजा का किन किन मनुष्यों के धन का धन पर अधिकार होता है, और राजा किन के साथ कैसा बर्ताव करे, कया वृत्या च वर्तित है। पितामह भीष्म कहते हैं कि ब्राह्मण की संपत्ति राजा की नहीं होती, बाकी सब की संपत्ति राजा की होती है। और जो ब्राह्मण ब्राह्मणोचित कर्म नहीं करता और बिना ब्राह्मणोचित कर्म करके जो पैसा कमाता है, वो भी राजा का ही होता है, ब्राह्मण का नहीं होता है, उस पर राजा का हक होता है। राजा का हक इसलिए नहीं होता कि ब्राह्मण यायावर वृत्ति, वार्ता वृत्ति, शिलोंचन वृत्ति और याज्ञ की वृत्ति, प्रतिग्रह वृत्ति, इनसे कमाता है और केवल निर्वाह जितना ही करता है, इसलिए ब्राह्मण के धन के ऊपर राजा का अधिकार नहीं होता। राजा का बर्ताव कैसे होना चाहिए कि राजा को देखना चाहिए कि मेरे यहां ब्राह्मण कोई अन्याय तो नहीं करते हैं, क्षत्रिय अन्याय तो नहीं करते हैं। सबसे ज्यादा राजा को दोष कब लगता है, जब ब्राह्मण के अंदर विकार आता है, ब्राह्मण चोरियां करने लग जाए तो वो चोरी राजा की हुई होती है। देखो, एक समय की बात है, केकय देश के एक राजा थे, वो जंगल में घूमने के लिए निकले। राजा महाराजा जंगलों में घूमा करते थे। एकदम एक राक्षस आया और राक्षस आकर के उन्होंने जो है राक्षस ने आकर राजा को पकड़ लिया। राजा ने कहा, ए राक्षस, तूने मुझे क्यों पकड़ा, मेरे जनपद में कोई चोर नहीं है, कोई शराबी नहीं है, कोई कृपण माने कंजूस नहीं है, ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं जो विद्वान ना हो, जो अग्निहोत्री ना हो, जो यज्ञ को नहीं जानने वाला हो, ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं है, फिर तूने मुझे क्यों पकड़ा। मेरे यहां ऐसा कोई क्षत्रिय नहीं है कि जो सत्यवादी ना हो, जो ब्राह्मणों की रक्षा न करते हो, जो युद्ध आदि अपने कर्म के अंदर निपुण न हो, ऐसे कोई क्षत्रिय नहीं है, फिर तू मेरे अंदर क्यों प्रवेश किया। वैश्य है, वो खेती करते हैं, गौ रक्षा करते हैं, व्यापार करते हैं और केवल अपनी आजीविका चलाते हैं, भोग परायण नहीं है, और उनके पास जो धन होता है उसका वो ठीक विभाग करते हैं, ऐसे वैश्य मेरे राज्य में, फिर तू मुझे क्यों पकड़ता है। शूद्र है, वो तीनों वर्णों की सेवा करते हैं, किसी की निंदा नहीं करते हैं, अपने कर्म में लगे रहते हैं, फिर तू मेरे अंदर क्यों प्रवेश करता है, मेरे अंदर तू कैसे घुस गया, मुझे कैसे पकड़ लिया। मैं दीन अनाथ बूढ़े दुर्बल पुत्रहीन पुरुषों का पालन करता हूं, मैं अपने गुप्तचरों के द्वारा ऐसे व्यक्तियों को ढूंढता रहता हूं कि जिनका कोई नहीं होता उसकी रक्षा कैसे की जाए। मैं अपने देवता और पितर के भोग लगाने के बाद भोजन करता हूं, मैं किसी भी स्त्री को खराब दृष्टि से नहीं देखता हूं, मेरे यहां ऐसा कोई सन्यासी नहीं है जो भिक्षा के द्वारा निर्वाह न करता हो और जो अपने वेद के बताए हुए धर्म के अनुसार न चलता हो, ऐसा कोई भिक्षुक सन्यासी नहीं है, फिर तू मेरे अंदर कैसे प्रवेश किया है। जिस राष्ट्र के अंदर विधवा नहीं है, जिस राष्ट्र के अंदर ब्राह्मणों ने अपना आदर्श नहीं छोड़ा है, जिस राष्ट्र के अंदर किसी प्रकार का काम नहीं होता है, पाप का कर्म नहीं होता है, उस राष्ट्र को कभी भी राक्षस से, उस राजा को कभी भी राक्षस से भय नहीं हो सकता। नमे शस्त्रे अनिर्भिन्नम गात्रे द्व्यंगुलम अंतरम, मेरे शरीर में दो अंगुल की जगह भी ऐसी नहीं है जहां मेरे शत्रु ने बाण न लगाए हों, इसलिए मैं युद्ध भी करता हूं, धर्म के लिए युद्ध करता हूं, गाय ब्राह्मण और यज्ञ के लिए युद्ध करता हूं, फिर तू मेरे अंदर क्यों प्रवेश किया है। तुमको यहां मेरे अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। तब वो राक्षस बोलता है कि राजन, मेरी शक्ति तुम्हारे अंदर प्रवेश करने की नहीं है, तुमने जो बात अपने मुख से कही है मैं उसको सुनने के लिए ही ऐसा बोला हूं, तुम्हें पकड़ा हूं और तुमसे सुनने के लिए किया है, बस ये ध्यान रखना, जिस देश में स्त्रियों का सतीत्व नष्ट होता हो, राजा लोग अन्याय से शासन करते हो, ब्राह्मण लोग पाप से गिर जाते हो, वहां प्रजा के अंदर नाना प्रकार के भय पैदा होते हैं, वहां वर्षा नहीं होती, छूत की बीमारियां होती हैं, भय और भूख से प्राणी मरते रहते हैं, सदा वहां लड़ाई झगड़ा विग्रह पैदा होता रहता है, वो देश बड़ा डरावना होता है। तुम सभी अवस्थाओं में धर्म का निग्रह करने वाले हो, तुमसे तो ये बातें सुनने के लिए मैंने तुम्हें पकड़ा है, जाओ तुम आनंद के साथ रहो, गायों की रक्षा करना, ब्राह्मणों की रक्षा करना, तुम्हें किसी प्रकार से किसी को भय, किसी से भय नहीं हो सकता। पितामह भीष्म ने कहा कि राजन, ये बातें तुम ध्यान में विचार में लाओ। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज आपने कहा कि ब्राह्मण के लिए आपत्ति काल में भी क्षात्र धर्म को स्वीकार कर लेना चाहिए, क्या ब्राह्मण को शस्त्र उठाना चाहिए कि उठा लेना चाहिए, तो क्या ब्राह्मण वेश्य वृत्ति में भी जा सकता है, कहा वेश्य वृत्ति में भी जा सकता है, आपत्ति काल में क्षात्र धर्म का पालन कर सकता है, शस्त्र लेकर के ब्राह्मण खड़ा हो सकता है, जब धर्म पर अत्याचार हो और क्षत्रिय वहां पर मुकाबला नहीं कर सकते हो तो ब्राह्मण को अधिकार है, और वेश्य वृत्ति से भी कि हाँ वेश्य वृत्ति से भी अपना काम चलाए, लेकिन ये चीजें न बेचे, मदिरा है, लवण है, तिल है, केसर है और पशु है, मधु है, शहद मांस है, बैल है, बनी बनाई मिठाइयां है, ये ब्राह्मण को किसी हालत में नहीं बेचना चाहिए। पशुओं का व्यापार कभी नहीं करना चाहिए। भेड़ है, बकरा है, घोड़ा है, ये व्यापार ब्राह्मण के लायक नहीं होते हैं। बनी बनाई रसोई के अंदर भी ब्राह्मण नहीं उसको उसका विक्रय न करें। इतना है कि कच्चा अन्न दे सकता है और पक्का अन्न ले सकता है, इतनी उसको छूट है, ज्यादा छूट नहीं है। कि महाराज ब्राह्मण शस्त्र कब उठावे, कि जब क्षत्रिय अन्यायी हो जाते हैं और क्षत्रिय स्वयं ही ब्राह्मणों से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, उस समय में ब्राह्मण लोग जो है क्षत्रियों से युद्ध कर सकते हैं। महाराज कैसे युद्ध किया जाए, क्यों युद्ध किया जाए, क्योंकि क्षत्रमी ब्रह्म संभवम, ये क्षत्रिय हैं, वो ब्राह्मणों से पैदा हुए हैं, पैदा होने के कारण से वे उनको दंड दे सकते हैं। जैसे अग्नि है वो जल से पैदा होती है, और ब्रह्मतः क्षत्रम ब्राह्मण क्षत्रिय, ब्राह्मण से क्षत्रिय पैदा होता है, अश्मनो लोहम और पत्थर से लोहा पैदा होता है, परंतु इनका तेज प्रभाव अपने उत्पत्ति के मूल कारण से लड़ने पर शांत हो जाता है। अग्नि और जल की लड़ाई हो तो अग्नि शांत हो जाती है, ब्राह्मण और क्षत्रिय की लड़ाई होगी तो क्षत्रिय जो है वो शांत हो जाएगा, क्योंकि क्षत्रिय के पास तो एक शस्त्र बल है, ब्राह्मण के पास तपस्या है, ब्रह्मचर्य है, शस्त्र भी है और निष्कपट भाव है, ये सब ब्राह्मण के बल है। इनके कारण से ब्राह्मण क्षत्रिय को दबा सकता है। और ऐसे ही पत्थर से लोहा पैदा होता है तो अपने मूल कारण के अंदर वो सब नष्ट हो जाते हैं, लोहा पत्थर को काटता है। इसलिए क्षत्र बल से बढ़कर ब्राह्म बल देखा गया है। कि महाराज ये डाकुओं का दल ज्यादा बढ़ जाए तो क्या करना चाहिए, तो कहा कि इसका मुकाबला सबको एक साथ करना चाहिए। डाकू दस्यु ज्यादा बढ़ जाए तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब अपने परिवार के अंदर बढ़ करके और जो है इनके साथ में युद्ध करना चाहिए। राजा को बहुत ध्यान रखना चाहिए। कई ऐसे ऐसे पुरुष आते हैं कि जो राजा को बड़े स्तुति से गुणगान करते हैं, पर वो शत्रु के भेजे हुए होते हैं, उनकी उनके ऊपर अलग से गुप्तचर रखना चाहिए, किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए और सर्वथा अविश्वास भी नहीं करना चाहिए। पर राजा को स्वयं को अपनी बुद्धि से देख देख करके विचार करना चाहिए। आप बताते हैं कि कुटुंबी जनों में दलबंदी हो जाए, अपने कुटुंब के लोग हैं वही आपस में दलबंदी कर ले तो क्या करें। युधिष्ठिर कहते हैं महाराज एवं अग्राह्य के तस्मिन ज्ञाति संबंधी मंडले मित्रेषु अमित्रेष्वेपि च कथम भावो विभाव्यते। कुटुंबी जन में भी यदि दल अलग अलग बन जाए, बेटा अलग चले, भाई अलग चले और स्त्रियों में वो अलग चले, वो अलग चले, क्या करना चाहिए, बड़ी कठिन समस्या होती है। पितामह भीष्म ने कहा कि इस विषय में मैं तुमको एक बात सुनाता हूँ। भगवान वासुदेव का और नारद ऋषि का संवाद हुआ था। एक दिन नारद ऋषि भगवान के वहां द्वारिका में पहुंचे। वासुदेव भगवान ने कहा नारद जी क्या बताएं? नासुरित परमं मंत्रम नारदार्थी वेरी तुम। जो व्यक्ति सुरिद नहीं हो और सुरिद और पंडित न हो उनके सामने क्या कोई बात कहे। बात तो उनके सामने कहे जो सुरिद भी हो और पंडित भी हो, समझदार हो। आप मेरे लिए सुरिद भी हो और पंडित भी हो, इसलिए आपके सामने कुछ बात कहना चाहता हूं। ये यदुवंश है, इस यदुवंश के अंदर मेरे ही जाति के मेरे ही कुटुंबी लोग हैं। अब मैं इनको अपना दास तो बनाना चाहता नहीं हूं और नारद जी मैं इनके बीच में अपनी कोई बड़ाई भी रखना चाहता नहीं हूं, परंतु मेरे कुटुंबियों के अंदर आपस में बड़ी खटपट हो रही है। जैसे अग्नि को प्रकट करने के लिए अरणि मंथन होता है, इसी प्रकार से कुटुंबी जनों के आपस के कटु वचन है वो हमारे अंदर अग्नि मंथन कर रहे हैं, माने अंदर हृदय मेरा जलता है। ये बलराम जी हैं, ये अपना अलग ही अपने बल में ही मस्त हैं, और मेरा बेटा प्रद्युम्न है वो अपने रूप में ही मस्त है कि मेरे जैसा रूपवान कोई नहीं, और इधर हमारे वंश के अंदर अंधक और विष्णुवंश है, इनके अंदर भी खटपट चलती है। सबसे बड़ा गुट बना हुआ है आहू का और अक्रूर का, अब इन दोनों की गुटबाजी है। अब हमारे बेटा बेटी, हमारे बेटा उनके बेटा, ये सब आपस में बटे हुए हैं। एक गुट दूसरे गुट से लड़ाई करके झगड़ा करके उलझ जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी। हमारे परिवार के अंदर ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं, तो बताओ नारद जी महाराज, इस परिवार को किस प्रकार से हम आपस में गुटबाजी से रहित बना सकते हैं? नारद जी कहते हैं कि हे भगवान, आप सर्वज्ञ हो, सब जानते हो, लेकिन आप लोक हित के लिए ये बात उठा रहे हो। संसार में प्राय सभी के परिवार अपने मनों से टूटे हुए ही हैं। आपत्तियां दो प्रकार की होती है, एक बाह्य आपत्ति होती है, एक आंतरिक आपत्ति होती है। इसमें दोनों ही अपने द्वारा भी बनाई हुई होती हैं और दूसरे के द्वारा भी बनाई होती हैं। जहां तक आपस का वैमनस्य होता है, एक दूसरे की उन्नति को देखकर जलन होती है, उसके पास जैसा ऐश्वर्य वो मुझे मिले, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, ऐसी जो इच्छाएं होती हैं वो स्वकृत कष्ट होता है, वो अपने ही द्वारा है, वो प्रारब्ध का नहीं है, भाग्य का नहीं है और परकृत भी नहीं है। जहां तक अक्रूर और उग्रसेन है, इनके अंदर राज्य का यदि किसी प्रकार से आपस में वैमनस्य होता हो तो राज्य का विभाग भी अच्छा नहीं है, धन का विभाग भी अच्छा नहीं है, इससे इनका कलह और ज्यादा बढ़ सकता है। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आप अपने कोमल स्वभाव से इस कुटुंब को एक बना सकते हो। अनायासेन शस्त्रेण मृदुना हृदय छिदा जिह्वाम उद्धर सर्वेशाम परिमृज्यानुमृज्य च। हे कृष्ण, आप ऐसा एक सुंदर शस्त्र बनाओ और वो हृदय को छेद डाले, ऐसा शस्त्र बनाओ और उस शस्त्र को आप जीभ में से प्रकट करो और ऐसा उसको प्रकट करके काम में ले कि सबको चुप कर देवे। युधिष्ठिर भगवान वासुदेव ने बहुत भोले बनते हुए पूछा, हे नारद जी, मैं ये अनायास शस्त्र जीभ से कैसे प्रकट कर सकता हूं? आप इस विषय में मुझे क्या कहना चाहते हैं? नारद जी कहते हैं कि देखो, मनुष्य को अपने जबान से कभी भी किसी को कटु वचन बिल्कुल नहीं कहने चाहिए, चाहे कोई अपने से छोटा हो और चाहे कोई अपने से बड़ा हो। आपके परिवार में, आपके वंश में इस प्रकार से जो दलबंदी हो रही है उसको आप अंदर ही अंदर सहते जाओ और मीठे वचन बोलो, इसके अलावा आपको कोई दूसरा काम नहीं करना है। ज्ञातिनाम वक्त कामानाम कटुकानी लघुनी चे। कड़वे वचन बोलेंगे और ओछापन दिखाएंगे, लेकिन गिराम त्वम हृदयम वातम समयस्व मनांसी चे, उनकी कठोर वाचों वाणी का आप मधुर वाणी से जवाब दो और ऐसा बोलो कि उनकी कटुता शांत हो जाए। इसके अलावा आपके पास इनको गुट रहित करने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। आप यदुसंग के मुखिया है, संग मुख्योसी केशव है, यदि आपने इनमें कोई ज्यादा राजनीति लगाकर फूट डाल दी तो ऐसे फूटे हुए तो है, फिर इनका आपस में संगठन होना मुश्किल है। आप इनको एक बार चुपचाप सहते जाओ और किसी को कुछ मत कहो, धीरे धीरे जब इनके अंदर ये बात समझ में आएगी कि हम लोग आपस में दल बनाकर दूसरे राजाओं के सामने शक्तिहीन होते जा रहे हैं, धन्यम धन के लिए, यश में, आयुष में, सब में हम औरों से पीछे चढ़ते चले जा रहे हैं, तब इनके अंदर अपने आप प्रेम पैदा होगा। ये स्वयं के अंदर भावना पैदा होने से होगा, इसलिए आपको चुपचाप सब सहना चाहिए। क्योंकि कुटुंब का जो मुखिया होता है उसके पास सबसे बड़ा शस्त्र सहनशीलता ही होती है। भीष्म पिता मैंने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी का बड़ा आदर किया और नारद जी वहां से चले गए। देखो, राजा को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि मेरे धन का उपयोग मंत्री लोग कहीं किसी प्रकार से अपने स्वार्थ में तो नहीं कर रहे हैं और इनकी वृत्ति खराब तो नहीं हो गई है, ये प्रजा का धन है, कहीं मंत्री लोग स्वयं तो इसका हड़प नहीं कर रहे हैं, इसका बराबर विचार करना चाहिए। इस विषय में मैं तुमको एक दृष्टांत सुनाता हूं। प्राचीन समय में कौशल देश के एक राजा थे, उनका कालक वृक्षीय नाम के एक मुनि के साथ बड़ा प्रेम था। वे मुनि उसके घर आया जाया करते थे। वे मुनि बड़े नीतिज्ञ थे, बड़े समझदार थे, इसलिए उन्होंने एक युक्ति निकाली। कौवा रख लिया और उस कौवे को लेकर पिंजरे में बांधकर घूमते थे। लोग मिलते कि महाराज आपने ये कौवा कैसे धारण कर रखा है, तो बड़े चतुराई से बोलते कि भाई हम लोगों को पशुओं की पक्षियों की वाणी का ज्ञान है, तुम लोगों को यदि पक्षियों की वाणी का ज्ञान करना हो तो लेगो ये कौवा बता देगा। अब ये कौवे की काव काव की आवाज से हम पहचान रहेंगे क्या बोलता है। तो लोग कहते हैं महाराज ये तो बड़ी विचित्र विद्या है, तो भाई हम तुमको सिखा दे। क्या महाराज अब क्या सीखना है, हमको तो समझ में आएगी नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, हम तो ये विद्या सिखाने के लिए घूमते हैं। ऐसा करते करते वे उस राजा के मंत्रियों के और मंत्रियों के साथ में रहने वाले और कर्मचारियों के सबके यहां घूमते थे और सब दृष्टि रखते थे। मंत्री वगैरह समझते थे ये तो मुनि ही कौवा लिए फिरता है, उन्होंने उनके सूक्ष्म दृष्टि पर विचार नहीं किया। ऐसे घूमते घूमते राजा के दरबार में एक दिन पहुंच गए। राजा ने बड़ा आदर किया, मंत्रियों की सभा लगी हुई थी। उस समय में राजा ने कहा कि महाराज हमने सुना है कि आप इस कौवे की वाणी से इसका भाव पहचान कर ज्ञान कर लेते हैं, भूत भविष्य वर्तमान का। हाँ कर लेते हैं, हमको ज्ञान है। इतने में ही कौवा कौं 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 करने लगा। राजा ने पूछा ये क्या हो रहा है, ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि आपका ये मंत्री है, ये मंत्री धन चुराता है। है? हमारे ये मंत्री तो बड़े अच्छे हैं, ये हम नहीं कहते, कौवा कहता है। आपके ये मंत्री हैं, ये भी धन चुराते हैं और इनमें ये सहायक बने हैं। असौच असौच जानीते राजकोषस्त्वया हृतः, एवं आख्याति काकोयम, ऐसा ही कौवा बोलता है। अब जिनका नाम लिया गया वो आपस में एक दूसरे को देखने लगे, और मुनि ने उस राजा के मंत्रियों से पूछा, तुमने चोरी की है, देखो मेरा कौवा बोलता है, ये कभी झूठ नहीं बोलता है, अनहोनी बात नहीं बोलता है, और इसकी जहां कहीं भी हमने बात की निगरानी की सत्य निकली है। तो सब अंदर ही अंदर शक पकाए, सबके मन में लगा कि हमारी चोरी पकड़ी जाएगी। तब उन्होंने रात्रि के अंदर जब मुनि सो गए तो चुपचाप किसी को इशारा करके धनुष बाण देकर उसके पिंजरे के अंदर बाण चलवाया और कौवे को मार दिया। प्रातःकाल हुआ, ऋषि मिले, कहने लगे महाराज हमारे मंत्री के लिए आपने कहा वो मैंने मालूम करवाया, वो बात तो बिल्कुल सच्ची सच्ची है। राजा ने अपराध मान लिया कि हमारे मंत्री लोग अपराधी हैं। महाराज और आप क्या कहना चाहते हैं? कहा कि देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, किसी के अपराध को सार्वजनिक मत करना, हमने गलती की कि तुमको एकांत में नहीं बताया। अब देखो ये कौवा हमारा मारा गया, ऐसे ही आपके पास में कोई आपके गुप्तचर किसी प्रकार की सूचना दे तो सबसे पहले आप उसके जीवन की रक्षा का व्रत लेवें और फिर परीक्षा करें और फिर इसको दंड दें। ऐसा मंत्री का त्याग नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि आपको कोई सिखाएगा कोई बात कहेगा उन लोगों के मन में शंका पैदा होगी, वो उसको मार देंगे। सदा सतर्क रहो, दुर्व्यहृतात् किसी के साथ दुर्व्यवहार न हो जाए, किसी के साथ हमारा वाणी से अपराध न हो जाए, किसी के साथ छल कपट न हो जाए। ये राजनीति एक नदी के समान है जिसके अंदर कई प्रकार के मगरमच्छ रहते हैं, इन सब से बचते हुए चलना चाहिए। मैं तो इस कौवे के द्वारा जैसे तैसे इस राजनीति से बच गया हूं, अन्यथा ये राजनीति बहुत अटपटी होती है। कई प्रकार से उनको शिक्षा दी और उसके बाद चले गए। युधिष्ठिर ने पूछा महाराज राजा की सभा कैसे होनी चाहिए? राजा की सभा के अंदर गुणवान और शूरवीर और नीतिमान धीमान ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होने चाहिए, शूद्र होने चाहिए, जो कि अच्छे बुद्धिमान हों, संतुष्ट हों और कभी भी समुदाय के पक्ष में अपना व्यक्तिगत हित देखने वाले न हों। यस्तु एको बहुभिः श्रेयान्, यदि एक के त्याग में सबका कल्याण होता है तो राजा को उधर विशेष ध्यान देना चाहिए, चाहे उसका कोई कितना भी प्रेमी क्यों न हो। वहां प्रेम को स्थान नहीं दिया जाता है, वहां प्रजा का स्थान ऊंचा रहता है। विनयी हो, राजा के बराबर बराबर में न चलते हो, आप चलते हो और बराबर में चलते हो, ऐसे नहीं हो, पीछे चलने वाले हो। आप जब बोलते हो तो दूसरे बोले न, आपकी आज्ञा हो तभी बोला जाए, और कोई शत्रु के आक्रमण की बात बोलता है तो सब धैर्य से सुने, घबरावे नहीं, और उचित समय पर उचित निर्णय लेने की क्षमता रखते हों, सब आपस में बैठ करके निर्णय देते हों, उनमें एक एक का निर्णय आपको सुनना चाहिए, और राजा को ये अधिकार होना चाहिए कि उसके पास जो मंत्रीगण है वो अपने विचारों को एकदम खुला और स्पष्ट बोले, चाहे वो राजा उससे सहमत हो चाहे न हो, अपने मंत्रियों से खुल करके बात करनी चाहिए। इस विषय में हम तुमको एक कथा सुनाते हैं, इंद्र की और बृहस्पति की बातचीत हुई। इंद्र ने पूछा कि महाराज मुझे तो एक शब्द में बताओ कि हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए, और ऐसी कौन सी चीज है कि जिसका भली भांति आचरण करने पर सबका प्रिय हो जाता है और यश मिलता है, वो छोटी सी चीज बताओ। ज्यादा व्याख्यान सुनना नहीं चाहता हूं। बृहस्पति जी ने कहा, स्वांतम एक पदम शक्र पुरुष सम्यग आचरण। देखो एक नाम है सांत्व नाम, माने प्रिय बोलना, बस ये प्रिय बोलना है। ये सब प्रकार से उत्तम से उत्तम, उत्तम से उत्तम साधन है संसार में यश प्राप्ति का और सबका प्रेमी होने का। जो आदमी कभी भी भ्रिकुटी तान कर नहीं बोलता है, उस आदमी के सामने कितना ही कोई द्वेष लेकर आए, वो आते ही शांत हो जाता है। बोलने से पहले मनुष्य को मुस्कुराना चाहिए और फिर प्रेम से शब्द बोलना चाहिए। ये प्रेम की वाणी इतनी दुर्लभ है इंद्र, यदि किसी आदमी को अन्न नहीं मिला लेकिन प्रेम से आपने जबान दे दी, बोल दिया, तो भी उस व्यक्ति को बड़ी शांति मिलती है। बड़े बड़े व्यंजन पुरुष तो भोजन करने के लिए, लेकिन उसकी वाणी में यदि मिठास नहीं है तो व्यंजन का मिठास किसी काम का नहीं है। मधुर वचन बोलने वाला व्यक्ति किसी को कुछ न देकर भी सब कुछ दे देता है, और उस व्यक्ति को सभी लोग अपना हृदय दे देते हैं। इसलिए इंद्र वाणी का सदा ही मधुरता से उपयोग करना। इंद्र ने उस बात को बड़े प्रेम से स्वीकार किया। युधिष्ठिर ने पूछा, महाराज राजा का व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो कहा कि राजा का व्यवहार बड़ा शील संपन्न होना चाहिए। राजा की दृष्टि ऐसी रहनी चाहिए कि सभी लोग ये माने कि मेरे पर राजा की बड़ी कृपा है। दुष्ट व्यक्तियों के मन में ऐसा भय होना चाहिए कि यदि हमने किसी प्रकार से कोई अपराध किया तो ये राजा हमको छोड़ने वाला नहीं है। राजा का बर्ताव ऐसा होना चाहिए कि जो व्यक्ति अपराध करने पर अपराध को सत्यता से स्वीकार करता है, तो राजा को उस व्यक्ति के प्रति और दृष्टि से ही विचार करना चाहिए। सीधा ही दंड का विधान नहीं रखना चाहिए, ताकि प्रजा के अंदर सत्य की रक्षा हो और सत्य बोलने का स्वभाव बने। ऐसे राजा का बर्ताव होना चाहिए। राजा को प्रजा के हित में अपने कुटुंब को कभी भी बीच में नहीं लाना चाहिए। राजा अपने मंत्रिमंडल से सलाह लेकर काम करें, अपने रनिवास में बैठकर प्रजा के विषय में ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। साफ लिखा है, राजा को अपने रानियों के बीच में बैठकर प्रजा की गुप्त बातें नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि गुप्त योजनाएं स्त्रियों के द्वारा प्रकट हो सकती हैं। इन बातों पर पूरा ध्यान देना चाहिए। राजा को और तो और पुत्री स्वपि राजेंद्र विश्वासो न प्रशस्यते, अपने बेटे पर भी इतना विश्वास न करें कि जिससे राज्य के अंदर खतरा पैदा हो जाए। महाराज राजा का निवास स्थान कैसा होना चाहिए? राजा का निवास स्थान अपने प्रजा से, लोगों से ऊंचाई के स्थल पर होना चाहिए, विस्तृत होना चाहिए, और वहां कई प्रकार के दुर्ग होने चाहिए। ऐसे ऐसे गुप्त को भंडार होने चाहिए जिसमें शस्त्र का किसी को भी पता न चले, प्रजा को भी पता न चले। गुप्त जलाशय होने चाहिए, कभी कोई किसी प्रकार से जल का संकट आ जाए तो जलाशय के द्वारा सबको जल मिल सके। राजा के महल में भी गुप्त जलाशय होने चाहिए, इस प्रकार से महल वगैरह बनाने का इसमें बताया है। अपने महल के चारों तरफ बहुत बड़ी खाई और गहरी खाई होनी चाहिए, उसके चारों तरफ हाथी और घोड़े और सैनिक रखने चाहिए। शत्रुओं के ऊपर शतग्नि से माने बंदूक से प्रहार करने के लिए छिद्र चाहिए और ऊपर परकोटों के ऊपर गुप्त रूप से वहां सैनिकों को तैनात रखना चाहिए। जैसे राजा का दुर्ग होता है माने किला होता है, ऐसे ही संपूर्ण अपने नगर की रक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए। राजा को ये विचार करना चाहिए कि हमारे प्रजा के अंदर जो वस्तु है उसका भावताव क्या है। विक्रियम क्रय मध्वानम भक्तं च सपरिच्छदम, वस्तु की गुणवत्ता पर भी विचार करना चाहिए कि हमारी वस्तु प्रजा को कैसी मिलती है। इसी तरह उत्पत्तिम दान वृत्तिम च, वस्तु का उत्पादन कैसे हो रहा है, शिल्प कर्म पर भी ध्यान देना चाहिए। राष्ट्रम अति दुग्धमी न कर्म कुरुते महत, जो अपने राष्ट्र का ज्यादा दोहन करते हैं वो भी अच्छा नहीं है, इससे राष्ट्र कमजोर होता है। राजा उतना ही धन ले जितनी आवश्यकता होती है। प्रजा को यदि कर से भय लगता है तो प्रजा की सहमति से ही कर लगाना चाहिए। राजा को इतना संग्रह रखना चाहिए कि कभी प्रजा दुर्भिक्ष में कर न दे सके तो उस संग्रह ही धन से प्रजा की रक्षा की जा सके। प्रजा को ने राजा को चाहिए कि वो अपने सैनिकों को समय पर वेतन दे, सांत्वना दे, पुरस्कार दे, हर प्रकार से उनकी सहायता रखे, क्योंकि राजा की शक्ति बताने वाले और राजा के लिए मरने वाले सैनिक ही होते हैं। जैसे भरपूर हरा भरा वृक्ष होता है उसको काटा नहीं जाता है, इसी प्रकार से राष्ट्र का दोहन नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अपराध करे तो राजा इसमें सोचे कि सबसे पहले इनके अंदर अपराध वृत्ति की भावनाएं क्यों पैदा हुई, मेरे शासन की कठोरता इन्होंने क्यों नहीं समझी, जहां तक वो अपने को विशेष कारण समझ करके फिर आगे विचार करना चाहिए। काम क्रोध की अवहेलना करनी चाहिए और संपत्ति का और राज्य का दर्प उसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। राजा जिस समय प्रमादी होता है तब वह संपूर्ण यज्ञों को छोड़ने लग जाता है, इसलिए यज्ञ वगैरह कभी छोड़ने नहीं चाहिए। युक्ता यदा जनपदा भिक्षन्ते ब्राह्मणा इव, जब गांव के लोग ब्राह्मण के समान भीख मांगने चले जाते हैं तब समझना चाहिए कि अब राजा का बड़ा भारी विनाश होने वाला है, राजा के राज्य में पाप आ गया है। और उसके मंत्री लोग उस राज्य को दूषित कर चुके हैं। धर्म पूर्वक राजा का शासन संपूर्ण प्रजाओं को आनंद देने वाला होता है। युद्ध नीति का वर्णन है कई अध्यायों में, तो उसका कोई मतलब नहीं, युद्ध कैसे करें उससे कोई मतलब नहीं है। आगे ये बताते हैं बहुत बढ़िया बात आती है, ये सब युद्ध नीतियों का ही वर्णन है। एक बार की बात है, महाराज जनक जी ने अपने सैनिकों से कहा, हे सैनिकों, मैं आपको दो प्रकार के दृश्य बताता हूं, स्वर्गम नरकम एव च, स्वर्ग और नरक। उन्होंने अपने योग प्रभाव से पहले नरक बताया कि ये देखो ये नरक है, कैसे ये जो युद्ध में भक्त हैं उनको ये नरक मिलता है, उनको ये नरक मिलता है, ऐसे ऐसे बताया। और फिर स्वर्ग का बताया, अभिरूणाम इमे लोका, कितने तेजस्वी पुरुष हैं जो ये युद्ध कर रहे हैं, और जो युद्ध के अंदर मरते हैं वो ऐसे स्वर्ग में जाते हैं जहां गंधर्व कन्याएं उनके सेवा में रहती हैं, कोई वस्तु का उनके पास कोई अभाव नहीं रहता है, ऐसे ऐसे स्वर्ग इनको मिला करते हैं। तो राजा जनक की बात सुनकर के वे सब के सब बड़े आनंदित हो गए और उनके अंदर उत्साह बढ़ गया युद्ध करने का। अब ये भी बताया है कि राजा जिस समय सेना लेकर जाता है तो क्या अपशकुन होता है, क्या शुभ शकुन होता है, अपने को इनसे कोई मतलब नहीं। ऐसे चलते चलते युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि महाराज, कभी कभी ऐसा भी होता है कि राजा खूब उद्योग करता है फिर भी उसके पास धन नहीं आता और मंत्री लोग उसको कष्ट देने लगते हैं, उस समय में उसके पास न तो खजाना है न सेना है, मंत्री लोग भी कुड़ते रहते हैं, नाराज रहते हैं, ऐसे राजा को क्या करना चाहिए। पितामह भीष्म ने कहा कि इसके विषय में हम तुमको एक दृष्टांत बता, एक इतिहास सुनाते हैं, इतिहास, वो इतिहास कल के प्रसंग में बताया जाएगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण
श्रीमन नारायण नारायण नारायण
श्रीमन नारायण नारायण।